نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القلب مره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه مبارك وسلم اما بعد نبي كريم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارگاہ اقدس میں حاضری دی تو ایک عجیب کیفیت تھی, کافی پریشان اور کافی درد دل کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور صحابی موجود تھے, تو آپ نے پوچھا کس واسطے تو کہتا ہے بھائی منافق ہو گیا, کیا وجہ؟ تو انہوں نے اپنے احوال پیش کیے, اپنی حالت کو پیش کیا اور عرض کی کہ یار اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے میں اپنی آنکھوں کو سراب کرتا ہوں, یعنی آپ کی زیارت کرتا ہوں آپ کے چہرے مبارک کی. آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کلیوں کو ان موتیوں کو میں اپنے دامن کے اندر چھپاتا ہوں, یعنی جو آپ باتیں فرماتے ہیں گفتگو کرتے ہیں وہ اتنی پیاری اور اتنی قیمتی ہیں کہ میں اپنے دل میں اتارتا ہوں, اس کو سینے میں اتارتا ہوں. تو حالت یہ ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے اس حالت میں ہم کہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں, میری آخرت کو میری نظریں دیکھ رہی ہیں, جنت کو نظریں دیکھ رہی ہیں, جہنم کو میری نظریں دیکھ رہی ہیں, اور اس قدر فکر ہو جاتی ہے مجھے آخرت کی کہ دیکھ چو رہا ہوں کہ بہت گھبرا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا. آپ سب سمجھ شاد فرمایا کہ اچھا بات دس یہ ہے, ساعتن فصحا, کہ جو تم نے یہ کیفیت بیان کی ہے تو ہوتے تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے یا اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے, یہ آپ اس کو تسلی دی صحابی کو. آگے پھر اس کا کچھ علاج بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ابھی حدیث جو ہے اس کو غور سے دیکھیں اور جس طریقے سے بزرگان دین نے اس پر الحمدللہ نصیحتیں فرمائی ہیں بہت ہی قیمتی ہیں. یہ حالات جو ہیں ایک صحابی ہے اور کم درجے کا آدمی تو نہیں ہے, اور عرض بھی کب کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, رسالت کا زمانہ تھا, آپ خود تشریف رکھتے تھے, चिराग और मोहन के जलवे हर तरफ फैले हुए थे, और इतना जबरदस्त जमाना था कि जो क़यामत तक कैसा जमाना आ ही नहीं सकता कि जो आदमी एक दफ़ा आप नबी अकरम का ईमान के साथ दीदार कर लेता था तो वो ऐसा इंसान बन जाता था कि कायनात में क़यामत तक ऐसा इंसान नहीं पैदा हो सकता। इतना ज़बरदस्त जमाना था। आज के ज़माने का उससे क्या मुकाबला आप सोचें, वो ज़माना और ये ज़माना, तो वो इतना रूज का था रहमतों के अंदाज से, और ये ज़माना तो क़यामत का ज़माना है। कौन सी ऐसी निशानी है जो हमें नज़र नहीं आ रही है क़यामत की, आप सोचें। बड़ी ऑनेस्टली कभी कभी तजिया किया करें इस बात का, कौन सी ऐसी निशानी है जो बुज़ुर्गान दीन बताते हैं कि क़यामत की निशानी है। मेरी नज़र तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो वैसी हो कि जिस क़यामत का इंतज़ार, बस यही एक बिगल बजने वाली बात है। जो हालात हैं वो तो बस बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस में बड़ी रहमतें हैं, बड़ा इनाम है, और हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। चाहे कैसा भी ज़माना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने और हदीस ने हमारे लिए इलाज छोड़े हैं। हम करने वाले हों, खाली नहीं छोड़ा कोई ज़माना भी। इसमें जो हालत पेश की हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो अपनी कैफियत बताई। कैफियत जो बयान फरमाई है उस ज़माने की, तो इस ज़माने में क्या हाल होगा। और कर रहे थे वो, या रसूल अल्लाह, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरी कैफियत तो गैर हो जाती है, बिल्कुल मुनाफिक लगता हूँ। आपके पास कुछ और होता हूँ, जब बाहर जाता हूँ दुनिया के मामलात, बच्चों के मामलात, घर के मामलात, कारोबार के मामलात, और सारी के सारी मामला चलते हैं, तो वो जो कैफियत यहाँ जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ वो तो नहीं होती मेरे दिल में, तो मुनाफिक हूँ। तो अब हम देखें हमारी हालत क्या है। हमारी जो दुनिया के उस ज़माने में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाज़ा लगाएं, इस ज़माने के अंदर जो दुनिया के हालात होंगे और जो गंद फैले हुए होंगे और जो चिपकते होंगे हमारे सीनों के अंदर, तो ये क्या हालात है भाई। ये कौन सा ईमान हमारे पास रह गया, कौन सा गुनाह जो नहीं है, इंसान बाहर निकलता है उससे आँखों से लेके, ज़बान से लेके, कमाइयों से लेके, कोई चीज़ ऐसा है ही नहीं कि जो इंसान के हालत को गैर ना कर दे। तो भी कैसे इंसान का खात्म खैर हो फिर, आप सोचिए जरा। हर चीज़ हमारी रस्में बन के रह गई, इबादत भी फूकी हैं, फूकी फूकी सब, अंदर कुछ है ही नहीं उसकी को। हकीकत तो यही है। तो जो उन्होंने हालात पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हालात थे, बिल्कुल ये हालात होते हैं उस ज़माने में। हालत तो आज के हालत क्या होंगे कि भाई इंसान कैसे सही हो सकता है, कैसे बच सकता है। तो अल्लाह के नबी से सुनने शायद जो फरमाई बात वो सुनने वाली है, कहते भी तो होगा, ज़माना तो ऐसे ही है, दुनिया तो ऐसी है, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने असरात ही रखे हैं। वो तो गंद रखी है, गंद चिपकेगा आपको, जब दुनिया में जाएंगे तो आपके साथ की कैफियत तो होंगी बिल्कुल ऐसी होंगी। उसी के साथ ही खुद ही उन्होंने इलाज बता दिया था हंजला ने, ये बता कैफियत चेंज कहाँ होती है तेरी, तो कैफियत कहाँ चेंज हुई, जब बारगाह रिसालत में पहुँचते हैं तो हालत बदली हुई होती है। तो फरमाया एक तो इलाज यही है इसमें, हुज़ूर दीन फरमाते हैं कि जब तक क़यामत आएगी, हदीस है, जब तक कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला हुआ क़यामत नहीं आएगी। तो अल्लाह के नबी एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत तक आएंगे, वो कौन है, अहलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, सच्चे आशिक रसूल, सच्चे मुत्तबे सुनत, सच्चे लोग क़यामत तक आएंगे। कि तो ये तो हदीस है। तो इलाज किस चीज़ का है, इलाज वही है जो हंजा ने फरमाया कि जब आपकी सोबत में आता हूँ तो तब्दील हो जाता हूँ, जब आपकी सोबत में आता हूँ तो तब्दील हो जाता हूँ। वो सारी कैफियत में बताएं, और यही अल्लाह वालों की सोबत में बताया गया है कि जब ये हालात पेश आ जाएं हमारे साथ, दुनिया इतनी गंदी हो तो घबराएं ना। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो तरीका क्या है कि अल्लाह वालों की सोबत अख्तियार करो। हदीस बता रही है अल्लाह वालों की सोबत अख्तियार करो, जैसे हंजला फरमा रहे हैं कि मैं आपके चेहरे वाले को देखता हूँ आपकी बातों को सुनता हूं तो मैं मुकाम एहसान पर पहुंच जाता हूं, मुकाम एहसान पर, मरतबा एहसान पर पहुंच जाता हूं। तो खैर बारगाह ही ऐसी थी, एक नजर में इंसान मरतबा एहसान पर पहुंचता था। तो और ये अल्लाह की भी शान बताई है कि उनको देखो तो अल्लाह याद आता है, उनकी बातें सुनो तो इल्म में इजाफा होता है, उनके पास बैठो तो गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। यही सोबत बताई और अल्लाह की, उनकी सोबत में बैठ के इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, इत्तबाए सुन्नत आता है, सही मोहब्बत उतरती है, गुनाहों से नफरत पैदा शुरू हो जाती है। तो फरमाया यही तो बात है फिर कि जब ऐसा जमाना कैसा भी आ जाए तो जैसा तू मेरे पास आता है और बैठता है तो यही कैफियत तेरी उतरती है, तो इसी तरह जिस जमाने में ये हालात इंसान के पेश आए और वो तो आएंगे जब आप बाहर निकलेंगे, तो चाहिए ये है तुम्हें कि अल्लाह ने जो उसका इंतजाम किया है, अहले अल्लाह की किसी की जाके किसी अल्लाह वाले की सुबह में बैठो, धुल जाओ किसी वक्त, साफ शिफाफ हो जैसे तू बताते हैं। और जिस तरह तू मरता हुआ आसान पर पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी लोग मतवातर अगर आते रहे और जिस तरह वो अल्लाह वाला बताता है उसकी सोबत में बैठते रहे तो मर्तबा एहसान नसीब हो जाता है। उसी तरीके से तो एक सवाल तो बिल्कुल हल कर दिया अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात उन्होंने कहा था जब बाहर में जाता हूं मेरी हालत ये होती है तो उसका क्या इलाज है, आप सब सुनते हैं उसका इलाज है बड़ा आसान कि उस वक्त ये चाहिए कि अपने दिल को और दिमाग को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू होते रहो। लफ्ज क्या है कि ऐसा अमल उस वक्त अख्तियार कर जिस वक्त इस हालत के अंदर पहुंचे कि तेरा दिल गुनाहों की तरफ रागिब हो रहा है, गंद घुस रहा है, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, इधर देखता है तो कुछ और नज़र आ रहा है, इधर देखता है तो कुछ और नज़र आ रहा है, 8-9-10 घंटे तुझे गुजारने हैं, मुख्तलिफ लोग तुझे मिल रहे हैं, जहाज मालूम तो हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ नज़र आ रही है। तो फिर जब ये कैफियत तेरी आ जाए और तेरा दिमाग घूमने लगे क्योंकि वो उस मजलिस से तू उठाया उसका रंग आस्ता आस्ता जैसा तू बताया बदलना शुरू होता है, तो कहना इसका भी बहुत अच्छा इलाज है कि जब तक तू इस ऐसी जगहों पे रहे और तू दुनिया के काम में मशहूर है तो तुझे ये करना चाहिए कि ऐसा अमल अख्तियार कर जिससे तेरा दिमाग और तेरा दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू हो। वो कौन सा अमल है, अल्लाह का जिक्र है, कितना बेहतरीन इलाज अल्लाह के जमाने से ना घबराए। अल्लाह सुभाना ताला ने तो क्यामत तक के लिए चाहे कैसा जमाना आ जाए ईमान वालों के लिए बचने के रास्ते बताए हैं दोस्तों। अब दो रास्ते हमें समझ आए, कैसी हो किसी माहौल में इंसान चला जाए, अगर किसी अल्लाह वाले की सबक अख्तियार करे, नंबर दो अल्लाह के जिक्र को पकड़े, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ईमान को कोई खतरा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी फरमाए कोई खतरा नहीं। और ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि क्यामत तक किसकी गारंटी कि अल्लाह वाले आते ही रहेंगे, ये नहीं रुक, जब क्यामत उसी वक्त आएगी जब कोई अल्लाह वाला नहीं होगा, अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, तो कह दिए पहले। तो ये कहना है कि नहीं वो उस जमाने में अल्लाह वाले थे अब नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जमाना कोई जगह कोई रीजन ऐसा नहीं होगा जहां ईमान वाला पहुंचे अल्लाह ताला उसका इंतजाम ना करे, मस्जिद ना बनाए, कुरान ना जाए, ऐसा नहीं होगा कि रमजान आ जाए तरावी ना पढ़ सके। अल्लाह ताला कहता है ये तो मेरी सुन्नत नहीं, जहां मेरा ईमान वाला जाएगा ईमान वाला पहुंचेगा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पहुंचेगा, सजदे भी पहुंचेंगे, तबलीग भी पहुंचेगी, दीन भी पहुंचेगा। अल्लाह ने कहा ये तो है ही नहीं, तुम ये तो मेरा सिस्टम है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई जमाना या कोई जगह ऐसी खाली हो जिस पर अल्लाह वाला मौजूद ना हो। तो ये हम एक्सक्यूज नहीं कर सकेंगे रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला हमें तो अल्लाह वाला मिला ही नहीं, वो तो अल्लाह जानता है नीयतों की, हमने कितनी कोशिश की है किसी को पाने के लिए, अल्लाह से कितनी दुआएं की, अल्लाह ताला मेरा दिल बहुत ख़राब है, गुनाहों से लतपत हुआ हूँ, मेरा तो हालात बहुत ख़राब है, मुझे किसी अपने दोस्त से मिला दे, अगर शाम से पहले पहले ना मिला तो फिर बात करें। मांग किससे रहे हो, वो चीज़ मांग रहे हो जिससे अल्लाह मिलता है, शाम से पहले पहले वो आदमी खुद आपके पास ना आ जाए और आपका दिल गवाही ना दे कि अल्लाह वाला है तो फिर बात करें। ये ढकोसले हमारे हैं। अब दो चीजें हैं दोस्तों जिंदगी गुजारने की, बड़ा साफ मैसेज है इसके अंदर, इस हदीस के अंदर बिल्कुल हमारे पे है, बिल्कुल हमारे पर है कि जब ये हालात हमारे ऐसे हैं कि हम गुनाहों की तरफ रगबत कर रहे हैं, गुनाह धड़ाधड़ हो रहे हैं, बुरी हालत है और उसको हम मजबूरी समझ रहे हैं और क्या करें क्या ना करें, इस हालत में रहना है और दूसरी चीज क्या है कि इस हालत को बदलना चाहते हैं। दो ही चीजें हैं ना। अगर हम इस हालत में रहना चाहते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि हम इस हालत को बदलें, ठीक है जी चल रहा है मामला, बस क्या करें, दिल खराब है और गुनाह भी हो जाता है, फला भी हो जाता है, कभी नमाज पढ़ लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, और हमने एक्सेप्ट किया है गुनाहों के साथ अपने वजूद को, और आखिर मौत तो आनी, इस तरह चले गए तो डायरेक्ट जहन्नुम है। दूसरा रास्ता क्या है कि जब ये कैफियत है इंसान की, और यकीनन है हमारी, ये हालात जब हमारे साथ हो रहे हैं कि जनाब अल्लाह दिल हमारे ख़राब हैं, गुनाह हमें चिपके हैं, बुरे हालात हैं, एक एक चप्पे में गुनाह मिलता है, तो किसी से कोई शिकवा नहीं, फौरन अगर हम चाहते हैं आखिरत को बनाना और वाकई चाहते हैं कि हम इन चीज़ों बच जाए, तो इसके बहुत आसान तरीका अल्लाह ने बता दिया, इसे अल्लाह वाले की सोबत अख्तियार करो, अल्लाह का जिक्र करो, सीधी बात। जब जिक्र करेगा अल्लाह ताला कहते हैं कॉन्स्टेंट तेरा दिमाग और दिल वजूद, हमेशा अल्लाह की तरफ रजू करेगा। और ये मिसाल ऐसी नहीं जो ऐदा रिसालत में कोई ऐसी मिसाल ना मिलती हो। दो सहाबी बाजार में मिलते हैं और मिलने के बाद बड़े दर्जे के सहाबी हैं, उनको हाथ पकड़ते हैं कि बैठ जाओ, क्या वजह है, कहते आओ मोमिन हो जाए, हदीस के मोमिन हो जाए बिठा लिया उन्होंने, खाली हजरत उमर थे, ये कौन सा मोमिन बना रहा है, मैं तो ईमान रखने वाला हूँ, बिठा लिया उसका शुरू करा दिया, अल्लाह का जिक्र करते रहे बैठ के, मैं बात तो करूँ जाके नबी पाक ने कहा कि यार सुन दर्दा थे शायद इन्होंने आज अजीब काम किया, दर्दा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहते, मैं मोमिन मुझे बाजार में बिठा लिया, कहता आओ मोमिन हो जाए, कहते तूने किया क्या था, कहते अल्लाह का जिक्र, कहते उसने सही कहा था, सही कहा था, ईमान इसी से ताज़ा होता है अल्लाह के जिक्र के साथ। तो मेरे भाइयों ये ऐसी चीज़ अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह का जिक्र दी है, अल्लाह का जिक्र इतना बड़ा इनाम है इंसान पर कि हर जमाने का हर शैतान की प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन सबसे पहले याद रखें नियत हो हमारी, ये समझ लें कि नियत हो कि हम इन तमाम हालात से अपने आप को बचाना चाहते हैं और अल्लाह ताला हम तेरी मदद मांग रहे हैं, हम तेरी मदद चाहते हैं क्योंकि हालात हमारे बहुत ही ख़राब हैं, दिल दिमाग आँख सब हमारे से गुनाह से अटका पड़ा है और ये हालत मौत की जो है बहुत ख़तरनाक हमारे लिए, हम तो उससे मदद मांगते हैं, मानो हमें पता है हमारी नमाजें कैसी हैं, सजदे हमारे कैसे हैं, तो तू हमें सच्चा और सीधा रास्ता दिखा और बाकी वैसे जिक्र नसीब फरमाए जैसे कि तुम इसकी तारीफें की हैं जिक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर किसी अल्लाह वाले के पास जाएँ और सीरियसली संजीदगी से दोस्तों, संजीदगी से, मेरी कोई ड्रामेबाजी नहीं, संजीदगी से इस लाइन को अख्तियार करें, अल्लाह के ऊपर हम अल्लाह के जिक्र की तस्बीह को पकड़ेंगे, अल्लाह का वादा है कि तुम इस्तकामत के साथ इसको हिलाते रहो, और जिस तरह हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि बात बढ़ती 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 इंशाअल्लाह मरतबा एहसान तक पहुँच जाती है, इंसान का दिल इतना मुतमईन हो जाता है कि जैसे देख रहे हैं गुनाह की वो मनुष्यत भी देखता है, फिर लजीज से लजीज गुना उसके सामने मनुष्यत उसको टच करती है, उसके जिस्म को वो करीब भी नहीं उसके जाता, क्योंकि दुनिया उसमें डूबी होती है, वो कहती है इसके बगैर तो हमारा काम चलने ही नहीं है, और उसको पता है कि ये इतनी खतरनाक चीज है, दुनिया काय कितने उसको मजबूर करे वो उसको टच भी नहीं कर सकता, उसके अल्लाह ताला इतना शऊर जगा देता है, अल्लाह का जिक्र उसको बातिन को इतना रोशन कर देता है कि उसको कबूल ही नहीं कर सकता, बेशक सारी दुनिया करती रहे वो कहेगा मैंने नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ ही नहीं उठते इस गुनाह के लिए, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा, यार तुम तो पता नहीं क्या, वो कहेगा मेरे वजूद ही नहीं एक्सेप्ट करता, मैं क्या करूँगा, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बना देता है नूरानी अल्लाह के जिक्र से, लेकिन करना पड़ता है। तो बाकी अगर हमें अपने जिस्म में कोई गुनाह नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं गुनाह है, ना हमारा शरीयत पे अमल है, ना हमारा सुन्नत पे अमल है, ना हम हराम को हराम समझ रहे हैं, ना हलाल को हलाल समझते हैं, ना हमें अपने लिबास की पता है, ना हमें शक्ल का पता है, ना घर का पता है, ना बच्चों का पता है, कोई भी एक हमारा शरीयत का एक शरीयत का कोई हुक्म लागू ही नहीं हो रहा हमारे पर, सतही चीज़ें जो हमने ली हैं चंद इबादत उसको पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन असर उसका क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि गुनाह वहीं के वहीं चिपके हैं हमारे साथ, सफाई हो ही नहीं उसकी, हो क्या, जैसे गंदे जिस्म के ऊपर आप अच्छे से अच्छे कपड़ा पहना दें लेकिन बदबू आती रहेगी, उन कपड़ों में से बदबू आ जाएगी, ये हमारा अमाल का हाल होता है कि हमारे गंध से, गुनाहों से अमाल भी हमारे खराब हो जाते हैं जो हम करते हैं, वो भी बेकार हो जाती है, नमाजें अंधी लूड़ी हो जाती हैं बेचारी। तो जब ये सब कुछ पता है और अल्लाह ने रास्ता दिखाया है भाई कि ये मेरा एक रास्ता है, जाओ किसी अल्लाह वाले के पास बैठो, उससे सबक अख्तियार करो और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिले उसकी सोहबत में बैठो, उसकी बातें सुनो, दिलचस्पी से सुनो, जो बातें कहें उस पर अमल करो, और जो जिक्र हो बताए जिक्र को सुबह शाम करो। कहीं ये नहीं मना किया कि आप दुनिया में ना जाएं, काम ना करें, इधर ना जाएं, बच्चे ना गए, उन्होंने हज़रत रज़ी ये मना नहीं किया था, उन्हें तो कहा था सातन वो तो होगा, ये तो बदलती रहेंगी चीज़ें तो नहीं बदल सकता, अपने आप को बदल, हमें अपने आप को बदलना होगा दोस्त। तो आज के ज़माने तो ख़ास तौर पर याद रख लें, ईमान के साथ जाने के लिए बहुत बहुत सख्त जरूरत है दो चीज़ें जो है इंसान हासिल करे, किसी अल्लाह वाले की सोहबत को हासिल करे और किसी अल्लाह के जिक्र। अल्लाह वाले की सोहबत का तरीका यह है, कोई तराजू नहीं है, कि जो बताया गया हदीस में कि अगर वो कैफियत किसी मजलिस में आपको उतरती हैं, अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है, गुनाहों से भी नफरत हो जाती है, जब उस मजलिस में बैठते हैं तो दुनिया से गायब होती है, अल्लाह के जिक्र की कैफियत उतरती हैं, अच्छी बातें नसीब होती हैं, शौक पैदा होता है अमल करने के लिए, बस यही अल्लाह वाले की मजलिस, इसी का नाम है, यही निशानी बताई। और जब हमारा दिल लग गया उस जगह तो बस फिर समझ जाएं कि अल्लाह ने सही राइट जगह पे हमें पहुंचा दिया है, अब इसको नहीं छोड़ना, इसकी पाबंदी ऐसी अख्तियार कर ले, फिर शैतान के इधर जा उधर कहता नहीं, बस एक ही मंजिल मिल गई है मुझे, कॉन्स्टेंट इस्तकामत के साथ। अब वक्त नहीं है इतना कि आदमी छलांग मारता फिर इसको टेस्ट कर लूं उसको टेस्ट कर लूं, हम टेस्ट करते हैं अल्लाह वालों को, अंदाजा लगे हम अल्लाह वालों को टेस्ट करते फिरते हैं, ये अच्छा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये फला है, किस तरह मिलती है मंजिलें दोस्तों, जहाँ आपको सुकून मिल गया, अल्लाह का जिक्र मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वहाँ तरबियत हो रही है, इस्लाह हो रही है, बस चमचा उधर, अल्लाह वाले जमीन तो खाली नहीं है ना, जब आपका मकसद यहाँ रखा गया आप देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है, फिर तो क्यों भाग रहे हैं, मकसद तो अल्लाह का पाना है, इंसान को पाना तो नहीं है, मकसद तो अल्लाह को पाना है, और जब आपको फील है उधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र की और आपको मिल गया और आपको दिल मुतमईन हो गया और आपकी तबीयत मिल गई उस शेख से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शेख के साथ बैठने में फैज़ उतरता है, जब तक तबीयत का कनेक्शन ना मिले, रगबत ना दोनों की आपस में, तो वो कनेक्शन नहीं जाता, याद रखें, रगबत नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं है इसमें कि ज़बरदस्ती बैठो, चलो जिसके पास है उसको बैत कर लो, ना कोई नहीं करता शेख ऐसे बैत, जब तक कि दोनों तरफ से मोहब्बत का मामला हो, ये निकाह है, ये रूहानी निकाह, ये दोनों तरफ से कहना पड़ता है मैंने कबूल किया, एक अजीब बात आ रही है, इस जैसे निकाह होता है ना, निकाह में मेहर देते हैं ना, दोनों तरफ कबूल किया, तो इसमें भी मेहर है, इसमें कौन सा मेहर मिलता है, अल्लाह का जिक्र मिलता है, ये इस निकाह का मेहर है, सुभान अल्लाह। तो जहां तबीयत मिल जाए, बातें पसंद आ जाए, फिर ये नहीं भागते फिरे, नहीं इसके पास बैठते हैं, ये ऊंचा है, नहीं वो बड़ा हो गया, नहीं जी इसका बड़ा नाम ऊंचा है, कुछ अल्लाह ने बाज़ दफ़ा जो आपकी तकस्मत में लिखा होता है, ऐसा छोटा इंसान होता है आपको पता भी नहीं, और अल्लाह को पता है कि ये आदमी इसके लिए सूट करेगा, हो सकता है किसी बड़े आदमी के पीछे हम लग जाएं जाकर, वो लिफ्ट ही ना कराए, बात ही ना करे, वहाँ धक्के पड़ते रहें, पूछे ना, फिर वहाँ से बेचारा चार पाँच साल के बाद फिर दूसरी तरफ रुख करे, इतनी ज़िंदगी के हमारे रास्ते हैं बच्चे, तो इस चार सालों का आप एक इंसान के साथ लगा दे तो कहाँ इंसान का मरतबा पहुँच जाता, कहीं से कहीं चला जाता है, आस्ते आस्ते उसके साथ चलता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई नहीं कह रहा कि एक ही दफ़ा में जाएगा तो वही वो बायज़ीद बस्तामी बन जाएगा या जुनैद बगदादी बन जाएगा, नहीं, गुना आस्ते आस्ते जड़ना शुरू, बस ये पता हो उसके कि ये रास्ता मेरा सही है, वो रास्ता है जो अल्लाह के नबी ने एक अपने साहबी को बताया है, और सारी घबराहट निकाल दी उनकी, तुम मुनाफिक नहीं हो सकते, यानी वो तो इतने बड़े इंसान थे, उन्होंने अपनी कैफी को देखा, उन्होंने कहते हैं मैं तो मुनाफिक हो गया, तो हम तो कहते हैं हमसे पक्का मोमिन कोई नहीं, बेशक सारा गंद भरा हुआ है हमारे अंदर, सारा गंद बढ़ा हुआ है, लेकिन ये खराब आदमी मैं सबसे अच्छा, ये बिल्कुल बेकार है, मैं तो बहुत पहुंचे हुआ आदमी, मैं कहते खराब, सफ़ देखे इतना बड़ा सहाबी, वो कह रहे मैं मुनाफिक हो गया, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते होंगे, और सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी इबादत अल्लाह चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कह रहा है मुनाफिक हो गया और ईमान की हालत में है, तो कितना खौफ और डर होगा कि इतनी क्वालिटीज के बावजूद सिर्फ इस कैफियत पर कि मेरी वहां कैफियत क्यों बदलती है, तो उस पर भी अल्लाह के नबी ने इलाज बता दिया उनको, जो क़यामत तक के लिए काम, हमारे लिए काम आ गया। क्योंकि मोमिन की शान नहीं है कि उसकी कैफियत बदले, कॉन्स्टेंट हो रहा है, या तो अपने शेख की सोहबत में रहे ताकि वो फैस पहुंचता रहे, अल्लाह की नूरानी पहुंचती रहे, जब उससे दूर हो तो फिर अल्लाह के जिक्र को पकड़े, दोनों हालतों में लगा रहे। और जिक्र जो है अलहम्दुलिल्लाह, इसी कल भी जिक्र है हमारा, तो बिल्कुल हर वक्त ये नियत हो दिल के ऊपर कि अल्लाह की रहमत का नूर मेरे दिल पे उतर रहा है और मेरे अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, चाहे कितना गुनाह भी उस वक्त सर धो रहा हो, आंखें कुछ भी कह रही हो, बकवास कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस मुराकबे को ना छोड़े। क्योंकि किसको बताया? अल्लाह के नबी ने ये इलाज बताया अपने साहबी को, इतनी बड़ी दर्जे को अपने साहबी को बताया कि देखिए काम तू कर, बस किसको ना छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बतजी इस काम पे लगे रहें, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत से चलते रहें, अल्लाह की रहमत पकड़ लेगी इंसान को, गुनाह भी खत्म हो जाएंगे, तब्दीली भी आनी शुरू हो जाएंगी, दिल भी बदलना शुरू हो जाएगा। बस ये ना उम्मीद रहा अल्लाह की रहमत से। जैसे आपको कोई बता देगा यार ये रास्ता जना पूछने आप जा रहे हैं, मैंने लंदन जाना है, कौन सा रास्ता, कभी तो जा रहा हूँ, कहते यार ये सीधा रास्ता है, हम सिख से ही जा रहे हैं, और आपको यकीन आएगा हम सिख से, आप उसमें बैठ जाए, बस फिर आप लगाए जनाब कुरान की सीढ़ी सुनते जाए आराम से, और कहते ठीक है जब क्या देखना साइन, मुझे पता चल गया अब सीधा रास्ता है, कितने आराम से जाता है, विषय आधे भी रोड वर्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, साइन भी आ रहा है, आप कहता मैं सीधा रास्ते पर मुझे फोन करेंगे, हाँ भाई मैं पहुँच रहा हूँ इंशाल्लाह, रास्ता मेरा बिल्कुल सीधा है, मिल नहीं रहा था रोड मुझे, तो रास्ता अल्लाह के नहीं बता रहे कि कैसी हालात आ जाए क़यामत तक के ज़माने में, कैसी ज़माना आ जाए, दो चीज़ों में मुस्तैदी से पकड़ लेना बस, और ये सोच के इस नीयत से कि मैं सही होना चाहता हूँ, ये नहीं शेख की सोबत में बैठे और काम सारे उसके बताए हुए खिलाफ करें, वो कहे ये दाढ़ी पूरा रखो, उसकी दाढ़ी वहीं की वहीं हो, वो कहे सुबह शाम जिक्र करो, कि जिक्र तो हो नहीं सकती मैंने दुकान कर ली है, वो कहे जी फलां करो कि ये तो मेरे, फिर कहे मैं सुबह सुबह तो शेख में बैठता हूँ, साहबी ने ऐसे किया था, ऐसा तो नहीं था। जब आप गए तो वहां से तो वो बातें निकलेंगी आपके लिए जो अल्लाह आपको सही करने के लिए करेगा, उसका पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है शेख का आपसे, अल्लाह पाक उसके दिल में वो बातें आपके लिए कहवाएगा जो आपको जरूरत है। और जब तक इस नीयत से नहीं बैठेंगे, सारी जिंदगी बैठे रहे, वो फिर मुनाफिक आदमी, इसको कहते हैं मुनाफिक, कि वहां जाने के बाद भी नफाक उसके अंदर मौजूद है, कि करना उसने अपनी मर्जी से, सुननी नहीं उस आदमी की बात, ना उसकी बात सुननी है, ना उसकी बात पे अहमियत देनी है, बस बैठ बैठ के फिर वापस आ जाना है। तो अल्लाह ताला कहे ये तो इससे बड़ा मुनाफिक और कौन हो सकता है, भेजा तुझे इसलिए था कि भाई ये रास्ता वो है कि तुझे नफाक से निकाले और तेरे अंदर से जो बकवासबाजी है, जो वो नफ्स पे चलता है अपने, अपनी मर्जी पे चलता है, तो उससे तू निकल कर अल्लाह की मर्जी पे चले, यानी स्टीयरिंग मूव हो जाए तेरा, अब तक तो अपनी मर्जी पे चल रहा है, चलो ये ऐसे कर लेता हूँ, चलो या वो लिबास पहन लेता हूँ, चलो ऐसे शिकल बना लेता हूँ, चलो या इतनी दाढ़ी रख लेता हूँ, ये तो हमारी अपनी मनमानी है, इससे निकल कर हमने अल्लाह की मर्जी पर आना है, अर्जी अल्लाह की मर्जी पर आने के लिए उस शेख के पास भेजा गया है, ताकि उसकी नूरानियत में, उसकी बातों में जो उसके अंदर अल्लाह ने फैज रखा है, उससे तू मुस्तफीद हो। अब वहां भी अकड़ गया तो ये ऐसी बात है, नाउज बिल्ला से हंजा अकड़ जाते हैं नबी पाक, नहीं जी हमने तो करना तो अपनी मर्जी से, लेकिन कोई इलाज होता है, ये सख्त ना शुक्रिया है, सही नीयत के साथ जाए कि यार ये आदमी जो बात कर रहा है इस पर तो मैंने अब अमल करना ही होगा, चाहे शुरू शुरू में कितना मुश्किल नजर आए, कैसा नजर आए, उसने कि हराम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ना है छोड़ दी, फलां काम गलत है गलत। मैं जब अपने हजरत के पास गया, मैं तो कहा आप तो बहुत अच्छे आदमी, मैं तो नालायक तरीन आदमी, बिल्कुल बेकार डब्बा, लेकिन एक नीयत सही लेकर गया था, वो नीयत ये लेकर गया था भाई मैंने सही होना है, फ्रॉड नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्यों, मैं कहीं सही होने है, तो मैं देखा ऊपर से नीचे हजरत ने, उसी अब तक याद आता है कि सही हो गए, मैं बिल्कुल सही हूँ मैं, अच्छा मंगा जी वादा है, मैं वादा है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उससे लेके अब तक पूरी कोशिश यही है कि जो हजरत ने बताया था उस पर अमल किया जाए, पता बस बस एक दफा बिक गया आदमी, बिक गया एक दफा, एक औरत का निकाह हो जाता है, निकाह हो गया आपके साथ एक औरत का, तो अब सारी जिंदगी उसने निभानी है आपसे, चाहे आपकी आंख टेढ़ी हो जाए या नाक सीधी हो जाए या हाथ ऊपर हो जाए या मुंह टेढ़ा हो जाए, उसने जो कुछ भी, अब तो तू मेरा खामिद है, तेरे साथ मैंने चलना है, जो गुस्सा है मारता है जो कुछ करना है, अब तो शेर के भाई तू कर ले बस, किस्मत में लिखी थी तेरी, अब जो जो तू करेगा मैं तो करना है, मैं अच्छी बीवी जो होंगी वो आपके साथ में निभाएंगी, तो कितना दर्जा इस पता, ये हमें कि भी अब जैसा शेख मिल गया उसकी हर बात को मानना ही है हमें, चाहे कितने क्यों, हाँ क्योंकि हमें सीधा होने आए, हमारा निकाह हो चुका है, मेहर भी मिल गया, तो अब क्या तलाक लेनी है जी बताए, तलाक लेंगे तो कहाँ मिलती है दूसरी बीवी, फिर ढूंढते फिरेंगे कहाँ मिलती, फिर पहली बीवी याद आती है, यार वो अच्छी थी कम से कम, यार ये तो कर लेती थी फलां कर देती, फिर पहला शेख याद आता नहीं यार वहाँ जाते थे बड़ा, फिर आदमी बिगड़ जाता है क्योंकि अल्लाह की नेमत को उसने ठुकराया है। तो ये भाई बहुत अच्छी हदीस पसंद मैंने पढ़ी असर के बाद, मैं कहा दोस्तों से इस हदीस पर बात करते हैं, आपने सुनी होगी मतलब कोई नई हदीस नहीं सुना रहा, फैल मालूम सुनते हैं, नई बात तो मैंने नहीं की लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि मेरी भी सलाह होगी, बड़ा अच्छा रास्ता है, दोस्तों को बताता हूँ कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह अल्लाह ने कैसा करम फरमा दिया, यार हमारी हालत इतनी गंदी थी कितना अच्छा रास्ता दिखा दिया, बड़ा आसान रास्ता है, वो जाके हम अपने किसी शेख के पास बैठना है और अल्लाह का जिक्र करना है, बस उससे जिक्र सीख के सारे दिन अपना उस जिक्र में महवर है आप, और पूरे यकीन के साथ कि रास्ता किसी छोटे आदमी ने नहीं बताया, ये जिक्र फ़ायदा देगा मुझे बेशक कुछ हो जाए, कभी ये वसवसा ना आने दें कि मेरे गुनाह नहीं छुटेंगे, ये मैं सही नहीं हूँगा, ये मैं ठीक हूँ, कभी भी ना सोचें इस बात को, जब सही ट्रैक पर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वादा है कि बा ईमान तो इस दुनिया से निकालो, इस्तकामत करके देखो उस पर करेंगे दोस्त, रास्ते आते हैं वसवसे आते हैं, छोड़ यार कुछ बन तो नहीं रहा यार, फला फायदा ही कुछ नहीं हो रहा यार, क्या बिल्कुल नहीं कहना, हो ना हो इस रास्ते को मैंने छोड़ना जो कुछ भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी का बताया वो रास्ता हसन और एक सहाबी को बताया, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, सवाल ही पैदा करता हूँ, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूँ, ना जिक्र छोड़ूंगा ना अपने शेख की सोबत छोड़ूंगा, दो चीज़ें मैंने तर्क नहीं करनी, ठीक है ना गुनाह होते हैं तो फिर माफ़ी मांगूंगा सब बताऊंगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी प्यारी इस हदीस में ध्यान में आ गई मेरे, हज़रत ने क्या किया जब उनकी यह हालत हुई, कहाँ गए, दो रकात हाजत पढ़ लेते नमाज की, खुद दुआ कर लेते, साबित है ना वो तो जानते अल्लाह कैसे गरीब है, लेकिन कितने के भागे भागे नहीं पाक बस सुभान अल्लाह, ये रास्ता बताया गया है कि जब ऐसे हालात हो तो बिल्कुल फिक्र ना करें, सबसे पहले आप शेख के पास जाके अपने अहवाल को पेश करें, वो जब दुआ करेगा आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी दुआ का असर कुछ और हो जाएगा, यानी सब बता रहे हैं। मतलब वो कहते भाई तू नमाज तहज्जुद इस्तफार की एक तस्वीर फेरता, जब तुझे हालत हुई थी जाकर तू नमाज हाजत पढ़ लेता, कुरान शरीफ तिलावत कर लेता, तू सहाबी है दुआ कर लेता, नहीं सीधा गए रोते जाति का नफाक, मैं तो बस मुनाफिक हो गया, कोई इज्जत नहीं कितने लोग बैठे, इसी तरह जाके अपने कोई गुनाह होया अपने शेख के पास जाए, बस जी हो गया हजरत दुआ फरमाए, मैं तो गया बर्बाद हो गया, सुभान अल्लाह, ये है तसव्वुफ, वहां छुपा रहे हैं नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छा आदमी, मैं तो बड़ा जी, अल्लाह को तो सब पता है, तस्वीर मतलब नहीं मैं झूठ बोलता ही नहीं जी, मैंने कभी नमाज कजा की ही नहीं जी, मैं तो सारी जमात से नमाज पढ़ता हूँ, टिक 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 हर से सही आ रही है, मैंने तो फला किया ही नहीं कभी, नहीं जी मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, दाढ़ी जी उगती ही नहीं जी, वो अंदर चली जाती, अब ये कोई बात है अंदर किधर जा रही है, देखें आप किस ये किसको धोखा दे रहा था, तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई ना, एक वो सिस्टम ही नहीं बनाया था, देखिए क्या है यार पहली लाइन तसव्वुफ की है, शेख के साथ ऐसा रिश्ता हो चार सदका वाला सीधा भागे भागेगा, नहीं यार सुसम बस मैं मुनाफिक, आप समझ कहते ठीक कैसे इलाज कर, ये एक पहला दर्जा है कि जब ऐसे हालात हों तो कहाँ भागे आते हैं, शेख नहीं हो तो कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं, किधर जाएंगे अल्लाह वाले से आप किसी दोस्ती नहीं कहाँ जाएंगे, कितनी अहम है चीज़ कि आदमी भागता है फॉर्म दूर खत लिखता है, हमेशा शेख बनाए नज़दीक बनाए, बल्कि उसी बस्ती में बनाए, अल्लाह से दुआ मांगे आपको घर के नज़दीक दे देगा, अल्लाह हमारी कैफियत को जानते हैं कि मैं सफ़र नहीं कर सकता, मैं इतनी दूर कहाँ जाऊँ, मुझे पता है वो बहुत बड़ा शेख है लेकिन इतनी दूर सफ़र करूँ, या मैं यही सुन लो एक टाउन से दूसरे टाउन कर लें आप कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरा जॉब ऐसा है अल्लाह ताला कि मैं फिनिश करता हूँ, बच्चे भी फिर मेरे शाम को बैठना पड़ता है, अब मैं शाम को वहाँ जिक्र करने जाऊँ, लेकिन जिक्र तो मैंने करना हर हालत में, हालांकि घबराता नहीं, इंशाल्लाह मैं खोलता हूँ दुकान जिक्र की दुकान खोलता हूँ यहीं पर इंशाल्लाह, एक जगह नहीं कई जगह खोल दूंगा, फिर सही है फिर भी ना है तो अल्लाह ताला फिर क्या कहेगा उसमें पता है, वो तो जिक्र हो रहा हो घर बैठा हो, वो कहता है मैं ठीक हूँ, यार ये कितनी बड़ी मुनाफ़त है, काम दे दिया घर में बैठने का टाइम, बीवी बच्चों का टाइम है फिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह पाए दो घंटे दिए, अब हर वक्त नहीं एक दूसरे को देखते रहना, तू मुझे देखती रहे मैं तुझे देखता रहूँ ऐसे तो कोई नहीं होता ना, थोड़े में जूते खड़क जाएंगे ऐसे करोगे, वो भी फैटअप हो जाएगी, वो भी फैटअप हो जाते हैं। तो जाओ कहेगा काम कर, नहीं मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देखती रहे बस, हम तो जिक्र जिक्र होता रहेगा, अभी बहुत कर लिया थोड़ा बहुत, ये ड्रामे नहीं चलते। जैसे अजान का टाइम होता है, एक तालिब को तो सच्चा तालिब है, कड़क जाए उसके अलहमदे, जैसे नोटिफिकेशन आया, देखें क्या सिस्टम अल्लाह पाक ने किया, ये सब अल्लाह ने क्रिएट की हुई चीज़ें, ये कुछ सोचें कहीं है ऐसा, क्यों सुना आपने ऐसी बातें कि हर शंकर चमकता है नोटिफिकेशन, फलां फलां और जिक्र, जैसे अजान नहीं होती पांच टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने किया सब, मैंने तो नहीं किया सर, मुझे भी आता है, तो आदमी अलर्ट हो जाता है एकदम। अब वहाँ बहाने बना लेंगे, नहीं नींद काम बीवी ये नहीं, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, टाइम भी दे दिया, काम भी कराया, बीवी अभी रात पड़ी है फिर भी तो बात कर सकते हैं, आगे चाय शाय पी ले, ये क्या बकवास कर रहे, सीधा चल, अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से कॉल आ रही है, अपने असलाह कर, क्योंकि जो गंद है सारे दिन का तेरे पास, कितने गुना हुए, अगर तूने साफ नहीं किया और तेरी मौत आ गई तो फिर तू जहन्नम में जाएगा, उठ सफाई कर जाके बस। अल्हम्दुलिल्लाह आधा पौना घंटा जैसे ही आप उस जिक्र की मजलिस में बैठेंगे, सारे दिन की जो आपकी कमाई होगी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत से भर जाएगी, वो ऐसी घर में बरकतें उतरेंगी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, आपकी सेहतों में, औलादों में, क्योंकि आपने एक ऐसी मजलिस को अटेंड कर लिया जिसके लिए अल्लाह पाक कहते हैं कि ऐसी मजलिस है कि इसमें आने वाला कभी महरूम होते ही नहीं। जितनी बात अल्लाह कह रहा है कि इस मजलिस में महरूम होते ही नहीं वाले, तो इसके लिए हम दुनिया को छोड़ दें यार, कैसे अजीब बात है, मेरे में कहाँ हिम्मत है कि मैं इतनी मस्जिद में जिक्र होते पढ़ूँ, या कहाँ कोई आज तक मैंने तो सुना नहीं यार, हर सुबह शाम इतना जिक्र, इतना बोल रहा ना, मैंने देखा ना, मैंने कहीं नहीं देखा, कितना करम अल्लाह ताला, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कैसी बस्ती हैं गुजराती लोग माशाल्लाह, इनकी वजह से हमारी किस्मत भी बन गई, हम तो बेकार हैं पाकिस्तान, ये तो गुजराती किस्मत है जिन्होंने हमें भी चमका दिया, उनकी मस्जिद में रहने लगी, हमें भी नौकरी करने की थोड़ी सी साधन नसीब होगी इनके सदके से, तो ये फिर कुछ इसमें हिम्मत ना करें तो फिर क्या होगा, मुझे आप बताएं, सोचने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ हमारे लिए, अल्लाह का जिक्र, दो चीज़ें, सोबत शेख अल्लाह का, सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज की रूह इसके अंदर मौजूद है, देख लें इसका आप खजाना करें। मेरे हजरत फरमाते थे कि हर चीज की कजा हो जाती है, सोबत शेख की कजा नहीं होती, कितनी बड़ी बात है, जो उस वक्त बात और रहमत उतर रही होगी अगर तुमने उसको कजा कर दिया, ना मालूम अल्लाह की कौन सी रहमत तेरे इस पर और तजली तेरे दिल पे उतरनी थी, तुझे नहीं पता कि किस मजलिस में तू जा रहा था, अल्लाह की खास तवज्जो होती है उस मजलिस पर जहां पे अल्लाह वाला बैठा होता है और जिक्र करा रहा होता है, खास खास तवज्जो होती है उस पर अल्लाह ताला की, अजीब गरीब रहमतें, हर जितने भी सालिक आए होते हैं मुरीद, हर एक पे डिफरेंट अल्लाह ताला की तजली उतरती है उस पर, मैं ये कसम खा के आपको बात कह रहा हूं, क्या ऐसी मजलिस कहीं नहीं मिलती जिस पे फरिश्ते नास करते हैं, आसमान खुल जाते हो, जमीन और आसमान फरिश्तों से भर जाती हो, क्या मजलिस होगी मुझे बताएं, इसके नखरे करने हम थके हैं फलां, ये तो जेब नहीं देती चीज, अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, मैं भी सुस्त हूँ, बस हिम्मत दिलाएं दूसरे को, जिंदगी का मेरे भाई को कोई भरोसा नहीं, अल्लाह हमें फजल फरमाए, दो चीज़ों के मुजाहदे भी नहीं इसमें, क्या देखें अब ये नमाज मगरिब के बाद ईशा ही पढ़नी है ना हमने, ये घर बैठ जाते वो कैसे सुन लेते, खुद की बात कर लेते, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से आप देखें, क्या अल्लाह ताला दे रहा है, दिल खुले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाग बाग हो रहे हैं, इतना लुत्फ आ रहा है, अल्लाह के रसूल की बातें, हिम्मत बढ़ रही है, मोहब्बत बढ़ रही है, गुनाह झड़ रहे हैं, अल्लाह की तवज्जो खास हो रही है, करीब अल्लाह के हो रहे हैं, फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हू अकबर, मुझे बताएं आधे घंटे में क्या कमा लिया हमने, क्या कुछ ले गए, और ये आज कल फिर सुबह हो जाएगा, पांच छह घंटे के बाद फिर ये मजलिस लग जाएगी, सुभान अल्लाह बोले, और नाश करो बोलने वालों अल्हम्दुलिल्लाह, रोते हैं लोग इस मजलिस के अंदर, तकरीबन 800 आदमी हाजिर हैं, 800-900 औरतों मर्द हाजिर हैं इस दुनिया के अंदर, आप उठा के देखें रिव्यू चलता है ये देखने से नजर मार, 800-900 तक आदमी होते हैं एक मजलिस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, ये सुन रहे हैं और आपकी तरह बैठे रो रहे होंगे वो कि कितने खुशकिस्मत आदमी वो लोग जो सामने बैठे सारी बातें सुन रहे हैं, ये कल खुलेंगे पर्दे वास्तव, कल पर्दे खुलेंगे, क्या वो पागल होंगे इस वक्त रात के वहाँ पाकिस्तान में क्या बजा होगा, अरब में क्या बजा होगा, चार चार पांच पांच घंटे का कहीं एक बजा होगा, कहीं तीन बजा होगा, जम्बिया में क्या बजा होगा, आए मैं फोन करके बताता हूँ कि कितने खानदान से वो जाग रहे होंगे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मुसल्ले पे बैठा हूं। कितनी औरतें और बच्चे जाग रहे होंगे, खुदा की कसम बच्चे, किसी का सुनते हैं 8-8, 9-9, 3-3, 4-4 घंटे का, अमेरिका में 6 घंटे का फर्क है, वहां सुन रहे हैं। इंडोनेशिया, हॉलैंड, हांगकांग, यानी कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो बैठना चाहते हो बैठ के रिसीवर में क्लिक करके जिक्र ना सुनते हो। अल्लाह का मैं कसम खा कह रहा हूं। और फिर वो लश्कर करते हैं, ये कैसे लोग हैं यार वो लोग जो सब सामने बैठे सुन रहे होंगे अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह के जिक्र से मैं बोल रहे हम यहां सुन के मस्त हो रहे हैं। तो कितने अफसोस की बात, कल अल्लाह हमसे जब नेमत पूछेगा तो ये तो सबसे बड़ी नेमत थी कि तेरे घर के साथ था अल्लाह का जिक्र, वो महरूम थे और तुझे तो दिया था मैंने, तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया इसका, छोड़ना चाहिए। और किस तरह कॉन्स्टेंट दिया अल्लाह पाक ने, और कहा कि जिस नौकरी की वजह से तू छोड़ रहा था तो फरमाया अगर इसमें तेरे 10 पाउंड कम कर देता तू, 10 पाउंड तुझे कम मिलते तो याद रख उस 10 पाउंड की जगह तुझे 10,000 पाउंड की बरकत देता। और कसम खुदा की मैंने जिंदगी में देखा है, अल्लाह के लिए आप कोई चीज सेक्रीफाइस करते हैं, अल्लाह उधार नहीं रखता किसी का, उधार नहीं रखता, वही काम ठप कर दें। जिंदगी मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी जिंदगी में, एक टाइम था 5 से लेकर 6 घंटे तक मैंने काम कर रहा है, दुनिया बिजनेस मैन कारोबारी किए मैंने, दुनिया शॉपिंग कर रही है, बाइंग कर रही है, जिस तरह वेयर हाउस में लोग जाकर क्रिसमस पे लोग खरीदते थे, तो मेरी शॉप थी ना, वल्लाही जिंदगी में कभी नहीं गया मैं खरीदने, तो लोग कहते थे पागल है, बस जो सुबह 5 घंटे 6 घंटे में करना उसको करके दुकान बंद, ना कभी संडे गया, ना सैटरडे गया, ना वेयर हाउस गया, ना रिकॉर्ड ही तो जानते हैं सारी दुनिया में, क्यों बस खत्म, जो कुछ देना है 5 घंटे में देगा अल्लाह ताला, खत्म। मैं उस वक्त को क्यों और जुगाड़ लगाऊं जो अल्लाह को दे, मैंने वक्त देना है, अभी तो कोई तंगी नहीं हुई जिंदगी में, दोस्त रोटी खाते रहा, अल्लाह ने बहुत दिया। कभी जो अल्लाह के खातिर आपके वक्त देंगे कि इसमें मेरे यार अगर मेरे 10 पाउंड कम हो जाएंगे, मैं 5 मिनट पहले दुकान बंद कर दूं, 10 मिनट पहले दुकान बंद कर देता हूं, चलो चलता हूं, ये किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ आप अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं कि मैंने जाकर अल्लाह का जिक्र करना है। लेकिन शैतान, कुरान की आयत है कि सबसे पहले इंसान अल्लाह की तरफ चलता है, किस चीज से डराता है, खाएगा कहां से, और तेरा पूरा कैसे होगा, तेरा तो नुकसान हो जाएगा, 5 पाउंड तेरे कम हो जाएंगे, इतने पत्नी कितने ग्राहक आ जाएंगे, खबरदार जैसे ही टाइम देखे नोटिफिकेशन का भी जिक्र टाइम हो गया वहीं ड्रॉप करते हैं हर चीज, ट्रक साकित एवरीथिंग, वजू करें सीधा अल्लाह के जिक्र में आ जाए कि जिसका जिक्र कर रहा हूं देगा भी वही मुझे रिज़्क, क्या रिज़्क से बड़ी चीजें मिलेंगी, रूहानी रिज़्क अल्लाह बताएंगे। लेकिन कभी कुर्बानी देना सीखे हम अल्लाह के लिए, तब बात बनती है, नफ्स की कुर्बानी देना सीखे, नफ्स को मानना होता है, करना चाहिए ना दोस्तों या नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करें जितना अल्लाह के रास्ते में अपने अंदर को किल करेंगे, अंदर को हम मार के फिर उस चीज को हासिल करेंगे, अल्लाह के यहाँ बड़े इनाम आते हैं, बड़े इनाम आते हैं, बड़े इनाम, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे।